आप सुनना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज सुबह 98 वर्ष की उम्र में ट्रेजडी किंग दिलीप कुमार का निधन हो गया। आज ही केंद्र की मोदी सरकार के कैबिनेट का विस्तार होना है। इन खबरों के अलावा आज के पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र का हाल, जहां बीजेपी के 12 विधायकों को एक साल के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। ICMR की उस स्टडी की भी जानकारी देंगे आपको, जो कोरोना रोधी टीके के असर को लेकर की गई है। कांवड़ यात्रा से जुड़ी खबर भी होगी आज के पॉडकास्ट में। फिलहाल चलें पहली खबर की ओर। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार का आज 7 जुलाई को निधन हो गया। वह पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे। 98 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। आज सुबह 7:30 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। दिलीप कुमार को सांस लेने में हो रही दिक्कत के चलते 29 जून को एक बार फिर से मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वह अस्पताल के ICU वार्ड में थे। उनके निधन के बाद न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि उनके फैंस भी गमगीन हैं। दिलीप कुमार के डॉक्टर जलील पार्कर ने उनके निधन की खबर को कंफर्म किया है। दिलीप कुमार को आज मुंबई के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक नया सहकारी मंत्रालय सृजित करने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सरकारी सूत्रों ने कहा कि नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए सृजित किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। नए मंत्रालय के लिए एक प्रभारी मंत्री को बुधवार को नामित किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि नया मंत्रालय सहकारिता को एक सच्चे जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले जन आधारित आंदोलन में तब्दील करेगा। वह सहकारिता के लिए कारोबार को आसान बनाने की प्रक्रिया को कारगर करेगा और बहुराज्यीय सहकारिता के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद बुधवार की शाम को पहली बार कैबिनेट विस्तार होगा। 7 जुलाई की शाम को नए मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। सरकारी सूत्रों के हवाले से NDTV ने जानकारी दी है कि नई कैबिनेट आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे युवा कैबिनेट होगी। सूत्रों ने कहा कि विस्तार के बाद नई कैबिनेट की औसत आयु सबसे कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं और प्रशासनिक अनुभव वाले लोगों को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उन्होंने कहा कुल मिलाकर 2 दर्जन से ज़्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। योजना ये है कि छोटे छोटे समुदायों को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व दिया जाए। सूत्रों ने कहा कि मुख्य फोकस सभी राज्यों और विशेष क्षेत्रों पर है। महत्वपूर्ण ये है कि ये बदलाव चुनावी राज्यों को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। बता दें कि अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने मंगलवार को कहा कि कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद कोरोना वायरस से मौत का खतरा 95% कम हो जाता है, जबकि एक डोज से 82% तक। तमिलनाडु पुलिसकर्मियों पर की गई एक स्टडी के आधार पर यह दावा किया गया है। यह अध्ययन इसी साल 1 फरवरी से 14 मई तक तमिलनाडु के पुलिसकर्मियों पर किया गया था। अध्ययन में शामिल तमिलनाडु के 67,673 पुलिसकर्मियों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी, जबकि 32,792 ने सिर्फ एक डोज ली और 17,059 ऐसे थे जिन्हें एक भी डोज नहीं दी गई थी। बाद में इनमें से 31 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 ऐसे थे जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगी थी, जबकि 7 लोगों को एक डोज, और 20 ऐसे भी थे जिन्होंने वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं लगाई थी। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में भाजपा के 12 विधायकों को विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। जिन 12 विधायकों को निलंबित किया गया है, उनमें संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अल्वानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कोचे, राम सतपुते और बंटी भांगड़िया शामिल हैं। परब ने कहा कि इन 12 विधायकों को निलंबन की अवधि के दौरान मुंबई और नागपुर में विधानमंडल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस निलंबन के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, सुनिए।
ओबीसी समाज के सामने इस सरकार का नका फट रहा है, ये ध्यान में आने के बाद एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ओबीसी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 12 क्या, पूरे 106 एमएलए अगर हमारे सस्पेंड कर दिए तब भी हम लोग लड़ते रहेंगे।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को उन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि शिवसेना और बीजेपी बहुत जल्द एक साथ आ सकती हैं। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के विधायकों की ओर से किए गए हंगामे की कड़े शब्दों में निंदा की है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिवसेना के बीच नज़दीकियां बढ़ने और जल्द साथ आने के सवाल पर कहा कि जब हम 30 सालों तक साथ थे तब जो कुछ नहीं हुआ वह अब क्या होगा। महाराष्ट्र विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र के खत्म होने के बाद मीडिया से उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के सदस्यों ने सत्र के दौरान जिस तरह का कृत्य किया वह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को उस प्रस्ताव पर हंगामा करने की क्या जरूरत थी जिसमें केंद्र सरकार की ओर से राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग को 2011 की जनगणना का आंकड़ा मुहैया कराने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का व्यवहार बीजेपी विधायकों ने दिखाया उससे हम सभी का सिर शर्म से झुक गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी भी अब अपने स्वयंसेवक तैयार करेगी। कोरोना के हालात को देखते हुए अभी यह स्वयंसेवक स्वास्थ्य स्वयंसेवक के तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय संगठन की ओर से मिले निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार करने का काम तेज कर दिया गया है। स्वास्थ्य स्वयंसेवक प्रदेश, जिला, मंडल और ग्राम स्तर पर बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार करने के पीछे बीजेपी का तर्क यह है कि कोरोना आपदा के दौरान जो हालात बने उनसे सबक लेकर इन्हें तैयार किया जा रहा है। बीजेपी के ये स्वास्थ्य स्वयंसेवक गांव स्तर तक जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। इतना ही नहीं, भविष्य में अगर कोई आपदा की स्थिति बनती है तो यह सरकार के निर्देशों और फैसलों को जमीन तक ले जाने में मदद भी करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अभी कांवड़ यात्रा स्थगित करने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत जारी है। कांवड़ यात्रा पर अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है। सूत्रों की माने तो कोरोना महामारी को देखते हुए कांवड़ मेले को साल 2020 की तर्ज पर स्थगित किया जा सकता है। आपको याद दिला दें कि 2020 में सरकार ने कोविड संक्रमण के मद्देनज़र कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी थी। बताते चलें कि मंगलवार को कांवड़ मेले को लेकर पुलिस मुख्यालय में इंटरस्टेट ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई। इसमें कहा गया कि सभी राज्य अपने यहाँ के कांवड़ियों को हरिद्वार न पहुँचने का संदेश दें। साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि थाने स्तर पर मीटिंग कर लोगों को इसकी जानकारी दी जाए। डीजीपी अशोक कुमार ने सख्त निर्देश जारी कर कहा कि कोई भी कांवड़ी हरिद्वार पहुंचेगा तो उसे 14 दिन क्वारंटाइन किया जा सकता है। साथ ही बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स भेजी जाएगी। बताते चलें कि 23 जुलाई से 6 अगस्त तक संभावित कांवड़ मेले का आयोजन होना है। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएँ। न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में आज इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दें विदा। नमस्कार दोस्तों।